सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमिऊणे लायिरिये तिहुवणभवणे कमङ्गलप्पयिवे कलिकलु सफुसणघवसणे सुत्तं फोसासियं ओच्छं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है भूत पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी और जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब चौथी पुस्तक में स्पर्शनानुगम की बात चल रही है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 172 पर आए हैं और ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई अपने, अब आदेश प्ररूपणा चालू हो जाती है। मार्गणाओं में स्पर्शन की बात करेंगे। स्पर्शन और क्षेत्र में जो वर्तमान काल का जो है उसको हमने क्षेत्र कहा था और जो अतीत काल की अपेक्षा उसको स्पर्शन कहा था। जो अतीत में लागू है वो तो अनागत में भी लागू हो सकता है, क्योंकि वो तो तीनों काल के जीव उस मार्गणा या उस गति में या उस गुणस्थान में कहाँ कहाँ उनका क्षेत्र पाया जाता है उसकी बात यहाँ करते हैं। अब 11 नंबर का सूत्र हम पढ़ेंगे। आदेशेण गदीयाणुवादेण निर्य गदीये नेरयेसु मिच्छादिट्ठि केवड़ियम खेत्तम फोसिदम लोगस्स असंख्ये जदि भागो। आदेश से गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में नारकियों में मिथ्या दृष्टि जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है। अब ये वर्तमान की बात करके फिर अतीत काल की भी बताएंगे। स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात वैक्रिक समुद्घात मारणांतिक समुद्घात और उपपादगत मिथ्यादृष्टि जीवों ने सामान्य लोक आदि चार लोकों का असंख्यातवा भाग और मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणा क्षेत्र वर्तमान काल में स्पर्श किया है, शेष कथन क्षेत्र प्ररूपणा के समान जानना चाहिए। ये तो विस्तार से हमने वहां देखा था। अब 12 नंबर का सूत्र है। 6-14 भागावा देसुणा नारकी मिथ्यादृष्टि जीवों ने अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 6/14 भाग स्पर्श किए हैं, उसको बताते अभी। स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घातगत मिथ्यादृष्टि नारकी जीवों ने अतीत काल में सामान्य लोक आदि चार लोकों का असंख्यातवा भाग और मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। शंकाकार पूछता है सूत्र में नहीं कहा गया, यह अर्थ कैसे कहा जा रहा है। ये सब अलग अलग अर्थपद निकाल के उसकी बात की थी ना, उसका समाधान नहीं, क्योंकि सूत्र में स्थित और समुच्चयार्थ वा शब्द से उक्त अर्थ सूचित किया गया है। 6-14 से भागा वा लिखा ना। शंका अतीत काल की अपेक्षा नारकी मिथ्यादृष्टियों के विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात संबंधी क्षेत्र तिर्यक लोक के संख्यात वे भाग मात्र क्यों नहीं होते हैं। उन्होंने कहा ना चारों लोगों का असंख्यातवा भाग कहा था और ये पूछ रहा है पूरे लोक का तो असंख्यातवा भाग ठीक है, परंतु तिर्यक लोक का संख्यातवा भाग क्यों नहीं है, ये उसका प्रश्न है, उसका समाधान नहीं होते हैं, क्योंकि इंद्रक श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक नरक बिलोन से वो बी चाहिए बिलोन से हुआ ना नरक बिलोन से रुद्ध हृदयने अकुपाइड किससे किससे, ये बिलोंग के प्रकार बताए। इंद्रक किसको कहते, जो सेंटर में है उसको कहते इंद्रक। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऐसे दिशाओं में होते हैं उसको कहते हैं श्रेणीबद्ध। देखो एक सेंटर में होता है, पूर्व की ओर पश्चिम की ओर, जैसे स्वर्ग में हमने देखे थे विमान होते हैं, वैसे नरकों में भी बिल इसी प्रकार से होते हैं। सेंटर का उसको कहते हैं इंद्रक बिल, ये जो है श्रेणीबद्ध, दिशाओं और विदिशाओं में भी हो गए वो श्रेणीबद्ध है, और बीच में कहीं भी है उसको एट रैंडम हम कहीं थे तो उसको कहते प्रकीर्णक। एट रैंडम जो बीच बीच में है वो, जो दिशा और विदिशाओं में है वो श्रेणीबद्ध। श्रेणी है ना पंक्ति, पंक्ति रूप में जो है उसको श्रेणीबद्ध कहते हैं। श्रेणी यानी पंक्ति, एक लाइन में हो गए। और प्रकीर्णक यानी इन बिटवीन जो है वो प्रकीर्णक। तो ऐसे ये जो तीन प्रकार के नरक बिलोन से रुद्ध, रुद्ध ने अकुपाइड सर्व क्षेत्र तिर्यक लोक का असंख्यातवा भाग मात्र ही होता है। जितना जितना इन नरक बिलों ने जितना जितना रोका है क्षेत्र, वो तिर्यक लोक के असंख्यातवा भाग होता है। क्योंकि पूरी पृथ्वी इतना तो नहीं रोकते ना, तो जितना उन्होंने रोका है क्षेत्र उसकी बात कर रहे हैं। शंका, इंद्रक श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक नरकों में संचार करने वाले नारकी मिथ्या दृष्टियों में तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग क्यों नहीं स्पर्श किया? ये असंख्यात्वा भाग क्यों कह रहे हो, संख्यात्वा भाग स्पर्श क्यों नहीं किया है? उसका समाधान, नहीं स्पर्श किया है क्योंकि नारकियों का स्व क्षेत्र को छोड़कर पर क्षेत्र में गमन नहीं होता, जैसे देवों का होता है। नारकी अपने अपने क्षेत्रों में उनका विहार होगा, पर क्षेत्र में गमन नहीं होगा, जैसे दूसरे नरक के नारकी तीसरे नरक में पहले नरक में नहीं जाएंगे। शंका, नारकियों का पर क्षेत्र में गमन का अभाव मानने पर विहारवत स्वस्थान का अभाव प्राप्त होता है। कहेंगे आप अपना देश छोड़कर नहीं जा सकते अमेरिका में कहीं इंग्लैंड में, परंतु हम अपने देश में तो घूम सकते कि नहीं घूम सकते? हाँ, तो नारकी अपने अपने नगरों में बिलों में वहां तो घूमेंगे, उनको वो विहारवत कहेंगे। देखो समाधान, विहारवत स्वस्थान का अभाव नहीं प्राप्त होता है क्योंकि एक ही इंद्रक श्रेणीबद्ध या प्रकीर्णक नरक में विद्यमान ग्रामों के आकार वाले बहुत प्रकार के बिलों में गमन संभव होने से विहार व स्वस्थान पद बन जाता है। एक ही इंद्रक बिल है, जैसे यहाँ हमारे गांव होते हैं अलग अलग, वहाँ बिलों में अनेक छोटे छोटे बिल होते हैं। और जैसे हम कहते हैं ये तो कोई, हम गुफाएं देखते हैं तो गुफाओं में और छोटी छोटी अंदर गुफाएं होती है ना, वैसे जैसे गांव होते हैं, बड़ा जिला है और उसमें छोटे छोटे गांव है, वैसे एक बड़ा नरक का इंद्रक बिल है समझो, या श्रेणीबद्ध है कोई भी प्रकीर्णक हो, तो उसमें भी अंदर उसके छोटे छोटे जो सब बिल हो गए अंदर, तो उसमें उनका गमन होता है। जैसे यहाँ ग्राम होते हैं वैसे वहां भी बिल होते हैं। क्या लिखा कि इन नरकों में विद्यमान यानी होने वाला जो है इसे ग्रामों के आकार वाले बहुत प्रकार के बिलों में गमन संभव होने से विहारवत स्वस्थान पद बन जाता है। जैसे चूहे का बिल हमको तो बाहर से एक ही दिखता है, हाँ ये बिल में गया, हाँ तो अंदर उसके बिल में बिल अंदर कितने हो गए कंपार्टमेंट उसके। देखो शंका, असंख्यात योजन प्रमाण आयाम वाले श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक नरक होते हैं, इसलिए तिर्यक लोक का असंख्यातवा भाग विहारवत स्वस्थान का क्षेत्र बन जाता है। संख्यातवा भाग, फिर इसको प्रश्न पूछ रहे हो, वह प्रश्न चिन्ह चाहिए, बन जाता है ऐसा उसको प्रश्न पड़ा, शंकाकार की शंका है वो। क्या कहता है कि जो श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक नरक है वो कितने हैं बड़े बड़े, असंख्यात योजन प्रमाण है। तो सबकी टोटल करेंगे तो तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग बन जाना चाहिए था, ये उसका प्रश्न है। समाधान, ऐसी भी आशंका नहीं करना चाहिए क्योंकि असंख्यात योजन आयाम वाले श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक नरक भी तिर्यक लोक के असंख्यात वे भाग मात्र ही होते हैं। वो भले ही असंख्यात योजन वाले हैं, तिर्यक लोक को सरपास नहीं करते, वो उसके असंख्यात विभाग, संख्यात्वा भी नहीं बन सकता, असंख्यात्वा भाग बनता है। देखो मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद वाले नारकी मिथ्यादृष्टियों ने अतीत काल में कुछ कम 6/14 भाग स्पर्श किए। किसने? मारणांतिक वालों ने और उपपाद वालों ने। नारकी मारणांतिक करके कहां जाएंगे? मनुष्य और तिर्यंच में जाएंगे, बराबर। और उपपाद वाले नारकी कहां हो गए? आने वाले हैं, मिथ्या दृष्टि की बात है। सातों नरकों को ले लो, हाँ। सातों ही नरकों को ले लो, हाँ। तो कहते हैं मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद वाले नारकी मिथ्यादृष्टियों ने अतीत काल में कुछ कम 6/14 भाग स्पर्श किया है। 6 राजू प्रमाण, सातवें नरक तक 6 राजू होते हैं ना, क्योंकि नीचे एक राजू तो कल-कल होती है भूमि। तो यहाँ पर कुछ कम का प्रमाण देशों ने 3000 योजन है। उस शक का समाधान के द्वारा उसको बताएंगे। प्रश्न 6/14 क्या? 6/14 इतना ही भाग, यानी त्रस नाली का हम 14 भाग करेंगे तो उसमें से 6 भाग। उन्होंने 6 राजू/14 राजू, प्रतर राजू कहना आपको, हाँ, 6/14 राजू ऐसा नहीं कहना, 6 राजू है, सातवें नरक तक 6 राजू है, ऐसा मुझे कहना है। सातवें नरक के मारणांतिक करके कहाँ जाएंगे? मध्यलोक में आएंगे ना, तिर्यंच हो गए, बराबर है। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे? स्वयं भ्रमण तक जाएंगे कि नहीं जाते? जा सकते ना, हाँ। और उपपाद वाले वहां से आएंगे, हमको तो मैक्सिमम डिस्टेंस देखना है, उसकी अपेक्षा से 6 राजू हो जाते हैं। देखो शंकाकार पूछता है, तिर्यंच और नारकियों का सर्व दिशाओं में गमनागमन संभव है, इसलिए उक्त नारकियों का पूरे 6/14 भाग ही स्पर्शन क्षेत्र होना चाहिए, फिर कुछ कम कैसे कहा? ये कुछ कम में किसको लेना है, ये उसका प्रश्न है। समाधान, विग्रह गति में जीवों के विग्रह क्या सहेतुक होते हैं अथवा अहेतुक? विग्रह गति में ने मोड़ वाली जो गति है, वो मोड़ जो होते हैं वो सहेतुक होते हैं कि अहेतुक होते हैं? आचार्य स्वयं ही पूछ रहे। अहेतुक तो माने नहीं जा सकते, क्योंकि बिना कारण के कार्य पाया नहीं जाता। कोई भी कार्य है तो बिना कारण का नहीं होता है, यानी उसमें कोई तो हेतु होना ही चाहिए विग्रह वाली गति में। यदि दूसरा पक्ष ग्रहण कर किया जाता है, कि कौन सा दूसरा है? अहेतुक वाला, अहेतुक वाला। पहले सहेतुक बता दिया, अहेतुक, अच्छा सॉरी, अहेतुक तो माने नहीं जाते, बराबर। तो अभी सहेतुक मानेंगे उसको, अर्थात विग्रह सहेतुक होते हैं तो उसमें कारण कहना चाहिए। अगर सहेतुक कहेंगे तो हेतु बताना चाहिए। तो विग्रह का कारण कर्म है, क्योंकि संसारी जीवों की सर्व अवस्थाओं का कर्म को छोड़कर और कोई कारण पाया नहीं जाता है। उनका जो कुछ गमन आदि जो हो रहा है वो कर्मों के कारण हो रहा है, क्योंकि सिद्धों में तो हम देखते हैं ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, सीधा ऊपर जाके विराजमान होते हैं। अब उसमें भी अनुपूर्वी नामक नाम कर्म ही विग्रह का कारण है। हमने देखा था विग्रह गति में अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय पाया जाता है, और उसको कैसा कर्म कहते मालूम है? हाँ, क्षेत्र विपाकी। और कोई विपाकी मालूम है आपको?
और जीव विपाकी, जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। अभी उसमें पुद्गल विपाकी में ये हमने क्षेत्र विपाकी देखे, तो कोई भव विपाकी भी होगी ना, आयु कर्म आदि। और ये शरीर वगैरह में जो जिसका मिलता है फल जिसमें, तो पुद्गल विपाकी हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं विग्रह का कारण कर्म है और उसमें भी आनुपूर्वी कर्म को ले लेंगे। हमने देखा है जो रुजु गति से जाते बिना विग्रह के जाते हैं उनमें आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। यहाँ एक समय में मरण और दूसरे समय में वहाँ सीधे सीधे गति से जाते हैं तो वहाँ आनुपूर्वी का उदय नहीं पाया जाता है। आनुपूर्वी का उदय कब है, मोड़ वाली में है, तो मोड़ वाले के लिए उसी को उन्होंने कारण ठहराया। विग्रह का कारण कर्म है क्योंकि संसारी जीवों की सर्व अवस्थाओं का कर्म को छोड़कर और कोई कारण पाया नहीं जाता, उसमें भी आनुपूर्विक नाम कर्म ही विग्रह का कारण है क्योंकि अन्य सभी प्रकृतियों के पृथक पृथक कार्य पाए जाते हैं तथा पूर्व शरीर को छोड़ने के पश्चात और उत्तर शरीर को ग्रहण करने के पूर्व अंतरालवर्ती क्षेत्र में आनुपूर्वी नाम कर्म का विपाक यानी उदय होता है, ऐसा गुरु का उपदेश है। आनुपूर्वी कर्म जो गति नाम कर्म के साथ साथ आनुपूर्वी नाम कर्म भी बांधा जाता है, परंतु उसका उदय मात्र एक दो या तीन समय तक ही है विग्रह गति में। देखो देखो ऊर्ध्वगमन मात्र सिद्धों में ही होता है। आपने पूछा ऊर्ध्वगमन नहीं होता, अकेले नीचे जाता है, उसका कारण क्या है? यानी आनुपूर्वी का उदय नहीं है फिर भी नीचे जाता है, परंतु गति नाम कर्म है ना। वह कहाँ उत्पन्न होना है, कौन से गति में उत्पन्न होना है, कहाँ उत्पन्न होना है, ये गति और गत्यानुपूर्वी दोनों का ही कार्य चलता है। तो गत्यानुपूर्वी तो मात्र विग्रह गति में ही उदय है उसका, बाद में नहीं। गत्यानुपूर्वी नाम कर्म ऐसा भी उसमें ऐसा भी आता है कि अन्य गति में ले जाता है, ऐसा भी कहीं उसका निमित्त का ही कथन ही है सब। कर्णान योग में तो निमित्त से ही कथन चलेगा, परंतु वहां भी उपादान से कार्य होता है, ये बात तो हमें भूलना नहीं, कभी भी नहीं भूलना। देखो क्या कहते हैं कि पूर्व शरीर को छोड़ने के पश्चात यानी यहाँ मरण हो गया, और उत्तर शरीर को ग्रहण करने के पूर्व, शरीर ग्रहण नहीं किया परंतु आगामी आयु या भव उसका चालू हो गया, गति नाम कर्म का उदय शुरू हो गया, वो जो कोई आयु है उसका ना उदय शुरू हो गया, अन्य अन्य भी सभी अनेक कर्मों का उदय चालू हो गया है ना। तो अंतरालवर्ती क्षेत्र में आनुपूर्वी नाम कर्म का विपाक यानी उदय होता है, ऐसा गुरु का उपदेश है। यदि कोई ऐसी आशंका करे कि आनुपूर्वी नाम कर्म के उदय के नहीं होने पर भी मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों के विग्रह पाए जाते हैं, इसलिए विग्रह आनुपूर्वी नाम कर्म का फल है ऐसा नहीं माना जा सकता, तो उसे ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए। यानी विग्रह आनुपूर्वी को छोड़कर अन्य किसी कर्म के कारण होता हो ऐसा कोई मानता है तो वो बात ठीक नहीं है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। क्योंकि वह विग्रह तीर्थंकर प्रकृति के समान निकट भविष्य में उदय होने वाले आनुपूर्वी नाम कर्म का फल है। ये जो विग्रह जो है, मोड़ जो है, वो आनुपूर्वी कर्म का ही, कहाँ की मोड़ की बात चल रही है, मारणांतिक समुद्घात में, वहां तो आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय नहीं है परंतु निकट भविष्य में उसका उदय होने वाला है। अभी तो मारणांतिक समुद्घात किया है, वो तो ऐसा ही रहेगा और जीव मरण करेगा, तो वहां उसके आनुपूर्वी का उदय होगा, तो उसकी सत्ता अंदर है उस मारण आनुपूर्वी की, ख्याल है? तो निकट भविष्य में उसका उदय होने वाला है, इसका अर्थ ये होता है। ऐसा लिखा है जैसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने वाला है जिस जीव के जिस भव में, कभी होगा 13वें गुणस्थान में, फिर भी उसका कुछ कार्य दिखता है ना उस वो में। तीर्थंकरों के गृहस्थ अवस्था में भी कोई जो विशेष बातें बनती है, उनका विशेष पुण्य का उदय है या कुछ बातें उनकी बनती है, तो उसकी सत्ता है और उसी भाव में उसका उदय होने वाला है, तो उसका कार्य भी पहले से दिखता है। गर्भ कल्याण आदि वगैरह क्यों होते हैं? तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा होते लेते हैं तब उनके विशिष्ट वो मन परिज्ञान आदि उत्पन्न, ये जो कोई विशेषताएं उनके जन्म से ही पाई जाती है, वो क्यों पाई जाती है? तो निकट भविष्य में नियम से उनका उदय होने वाले तीर्थंकर प्रकृति का। वैसे उसके साथ यहाँ कंपेयर की है आनुपूर्वी की। आनुपूर्वी नाम कर्म का अभी अभी उदय होने वाला है, अभी तो मारणांतिक समुदात हुआ है। मारणांतिक समुदात में प्रदेश तो वैसे ही रहने वाले विग्रह में जो जिस, तो विग्रह क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ आनुपूर्वी की अभी उदय होने वाला ही है, उसकी सत्ता है उसमें। ऐसा भी आता है बद्धायु के होता है ना, तो जिसने आगामी आयु बांधी है तो आयु बद्धायु की सत्ता, उसको भी कहा है ये विग्रह का कारण, यानी मारणांतिक समुद्घात का कारण, विग्रह का नहीं मारणांतिक समुद्घात का। तो विग्रह क्यों होता है, मोड़ क्यों होता है? क्योंकि वैसी आनुपूर्वी का उदय होने वाला है, उसकी सत्ता भी है वहां, इसलिए विग्रह होता है। यदि कोई ऐसी आशंका करे यदि कोई ऐसी आशंका करे कि सुचंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र बाहल्य वाले तिर्यक प्रतर में अर्थात राजू के वर्ग में जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र अवगाहना के भेदों से गुणा करने पर जो राशि अर्थात आकाश प्रदेशों की संख्या आती है, उतने प्रमाण नरक गति प्रायोज्ञानुपूर्वी की प्रकृतियां होती है। अभी नरक गति प्रायोज्ञानुपूर्वी का उदय पाया जाता है जिस क्षेत्र में, तो वो क्षेत्र उसके प्रायोज्ञानुपूर्वी के प्रकृति के उदय, कितनी प्रकृतियां वगैरह उसका अभी गणित बता रहे, फिर पढ़ेंगे इसको। कि कोई ऐसी आशंका करता है कि सुचंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र बाहल्य वाले तिर्यक प्रतर में अर्थात राजू के वर्ग में, तिर्यक प्रतर का राजू का वर्ग, एक राजू गुणा एक राजू, जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र अवगाहना के भेदों से गुणा करने पर वहां जो राशि अर्थात आकाश प्रदेशों की संख्या आती है, उतने प्रमाण नरक गति प्रायोज्ञानुपूर्वी की प्रकृतियां होती है। ये पूरा पढ़ेंगे तो कैसा गणित वो बताना चाहते वो ख्याल में आएगा। अब घनलोक में जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र अवगाहना के भेदों से गुणा करने पर तिर्यक गति प्रायोज्ञानुपूर्वी के प्रकृति विकल्प होते, प्रकृति विकल्प है ना प्रकृति के भेद, जैसा ऊपर लिखा ना अलग अलग इतने प्रकृतियों के भेद, देखो तीसरी लाइन में बताया था, उतने प्रमाण यानी उतनी अलग अलग संख्या नरक गति प्रायोज्ञानुपूर्वी की प्रकृतियां होती है। वैसे यहाँ क्या लिखते हैं, तिर्यक गति प्रायोज्ञानुपूर्वी के भी प्रकृति के भेद बता रहे। तिर्यक गति प्रायोज्ञानुपूर्वी किसके होगी, जो तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले उसके पहले उसका उदय होगा, और नरक गति प्रायोज्ञानुपूर्वी जो नरक में जाने वाले मनुष्य तिर्यंच से जो नरक में जाने वाले उनकी बात है। ऊर्ध्व कपाट के छेदने से निष्पन्न 45 लाख योजन बाहल्य वाले जगत प्रतर में, तिर्यक प्रतर में, सॉरी फिर पढ़ती हूँ, ऊर्ध्व कपाट के छेदने से निष्पन्न 45 लाख योजन बाहल्य वाले तिर्यक प्रतर में जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र अवगाहन विकल्पों से गुणा करने पर मनुष्य गति प्रायोज्ञानुपूर्वी के प्रकृति विकल्प होते हैं। मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय होगा तो मनुष्य कहाँ जन्मेंगे, 45 लाख योजन में, तो इसलिए यहाँ 45 लाख योजन का प्रमाण लिया कि 45 लाख योजन बाहल्य वाले तिर्यक प्रतर में, प्रतर यानी उसका भी ऐसे लेवल ली, हॉरिजॉन्टल लेवल ली उसकी, जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र अवगाहन विकल्प, ये जो अवगाहना के जो विकल्प है, मनुष्यों के जो अलग अलग अवगाहना होती है उसके विकल्प यानी भेद, जैसे नारकियों में भी हमने देखे और तिरियंचों में भी देखे, वैसे हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं। ये मनुष्य अत्यानुपूर्वी के उदय की बात चल रही है। क्या कहते कहीं भी आए तो जितने क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं उस क्षेत्र को अवगाहना के भेदों से गुणा करना है, इतना ही लेना है। अब कहते हैं 900 योजन बाहल्य वाले जगत प्रतर में तिर्यक, ऐसा क्या हो रहा है? हाँ, वो जगत श्रेणी का पहले ही पढ़ लेती हूँ। 900 योजन बाहल्य वाले तिर्यक प्रतर में जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र अवगाहन विकल्पों से गुणा करने पर देवगति प्रायोज्ञानुपूर्वी के प्रकृति विकल्प होते हैं। ये वर्गणा खंड के जो आगे आने वाले हैं उसके अभी कुछ यहाँ नियम बता रहे हैं। इन वर्गणा खंड के सूत्रों के अनुसार अनुपूर्वी नामक नामकर्म संस्थान विपाकी ही है। संस्थान विपाकी का अर्थ क्या होता है? वहाँ जो शेप है जीव का विग्रह गति में, उसका कार्य क्या है? उसका विपाक यानी फल किस रूप में मिलता है? पूर्व भव का जो आकार है वह मोड़ वाली गति में कायम रहता है। अनुपूर्वी का ही कार्य है ये। संस्थान विपाकी यानी विपाक यानी उसका फल क्या है अनुपूर्वी का? जैसे मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तो मैंने उदाहरण पहले भी बहुत बार देख चुकी हूँ, कुत्ता मरकर मनुष्य हुआ तो उसका विग्रह से अगर वो मनुष्य गति में आया है विग्रह करके, तो वो विग्रह गति में मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय, जैसे मनुष्य गति का उदय चालू हो गया, कुत्ते की उसकी जो आयु है वो पूरी हो गई, कुत्ते रूप से मर गया, अगले ही समय में मनुष्य आयु का उदय शुरू हुआ, मनुष्य गति शुरू हो गई। अब विग्रह गति से आने वाले के मनुष्य गत्यानुपूर्वी का भी उदय चालू हो गया, तो उसका कार्य क्या होगा? वो पहले कुत्ते का शेप चालू रहेगा उस विग्रह गति में, संस्थान विपाकी इसलिए का संस्थान यानी उसका शेप। तो संस्थान नाम कर्म का उदय कब होता है? जहां जन्म लेने वहां टच होते ही, जो सीधी गति से जाता है उसका डायरेक्ट संस्थान नाम कर्म का उदय होता है। विग्रह वाली गति में संस्थान नाम कर्म का उदय नहीं है। जीव जिस भव में जाता है, जो उसकी उसका जो शेप है, जैसे कुत्ते का है, घोड़े का है, मनुष्य का है, देव का, नारकी का जो है, वो उनके उनके संस्थान नाम कर्म के उदय से होता है। संस्थान कितने प्रकार के आपको मालूम है? 6 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ बरोबर, समचतुरस्र संस्थान, फिर न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक है। हुंडक यानी जो नहीं बता सकते, अवक्तव्य जो कुछ आकार होते हैं उसको सब हुंडक में बता देना। तो ये संस्थान विपाकी कहा इसको। नहीं, रुजुगति में नहीं, रुजुगति में डायरेक्ट संस्थान नाम कर्म का उदय होता है, और विग्रह करके जाने वाले को अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है। नहीं, रुजुगति में अनुपूर्वी का उदय नहीं होता, इसलिए यहाँ विग्रह की बात चल रही है। विग्रह यानी मोड़ क्यों होते हैं? क्योंकि अनुपूर्वी की वहां सत्ता है और निकट भविष्य में उदय में आने वाले है, इसलिए मारणांतिक समुदाय में भी मोड़ पाए जाते हैं। और जब विग्रह करके जाता है कोई जीव बिना मारणांतिक का, तो उसका तो अनुपूर्वी का उदय है ही है। कोई जीव बिना मारणांतिक के भी विग्रह करके जाएंगे ना, मारणांतिक समुदाय सभी जीव नहीं करते। अब सेकंड लाइन में तो उसे ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र और संस्थान में व्यापृत अर्थात क्षेत्र विपाकी और पुद्गल विपाकी होते हुए भी उस अनुपूर्वी प्रकृति का एक ही अर्थ में व्यापार मान लेने में विरोध है। वो क्षेत्र विपाकी भी है और पुद्गल विपाकी भी है, ऐसा यहाँ कहने। आपका प्रश्न है कुछ? वही तो बात कही ना, विग्रह गति में उसका जो शेप है वो पूर्व भव का शेप, अनुपूर्वी के उदय के कारण वो शेप चलता है उसका। हाँ, रुजु गति में जो अगला देखो, विग्रह गति से भी जाने वाले उसका भी संस्थान नाम कर्म का उदय कब होगा? जब विग्रह करके अंतिम मोड़ है ना, मान लेते हमने दो मोड़ लिए और यहाँ पहुंचा, तो ये जो है लास्ट मोड़ के बाद, तो उसी समय उसको संस्थान नाम कर्म का उदय होता है। अब ये जो पहला मोड़, दूसरा मोड़ के पहले, अंतिम मोड़ के पहले पहले तक, अभी हमने दो मोड़ लिए, तो एक समय और ये दूसरा समय, ये दो समय तक अनुपूर्वी का उदय होगा। तीन मोड़ सही जाने वाले के तीन समय, यानी मोड़ के पहले पहले, अंतिम मोड़ के पहले पहले, अंतिम मोड़ के बाद वही समय है वहाँ पहुँचने का। तो हाँ, और फिर जब संस्थान नाम कर्म का उदय होता है तो अभी जो जिस भाव में आया है उसका शेप वहाँ से शुरू हो जाता है। देखो, दूसरी बात यह है, यह भी है कि वे, यहां देशों ने शब्द डालना, देशों ने आकाश के प्रदेश के इसी स्थान विशेष पर होते हैं ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उनका अवस्थान परमागम के अविरोध से माना गया है। इसलिए अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय के अप्रायोग्य क्षेत्र में उत्पन्न होने के प्रथम, द्वितीय और तृतीय विग्रहों में अवस्थान नहीं है, अतः देशोन्नता घटित हो जाती है। ये कुछ कम की जो बात की थी उसका उत्तर चल रहा है। क्या कहा? वहां अनुपूर्वी का उदय का अप्रायोग्य क्षेत्र है, वो अनुपूर्वी का उदय नहीं है, अंतिम मोड़ के बाद है ना, अनुपूर्वी का उदय नहीं हुआ, तो इसलिए उसके अयोग्य क्षेत्र है वह, इसलिए देशोन्नता घटित हो जाती है। यह अर्थ ऊपर आगे सर्वत्र यथावसार कहना चाहिए। अब 13 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। देखो, इन्होंने अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय के कारण बताया, ये जो थोड़े देशों ने कहा था ना, उन्होंने यहाँ पर प्रश्न 174 पृष्ठ पर है। हाँ, 3000 योजन कम, वो तो बता ही, 3000 योजन है। और शंकाकार उस पर पूछा था उसने कि तिरियंच और नारकियों का सर्व दिशाओं में गमनागमन संभव है, इसलिए उक्त नारकियों का पूरे 6/14 भाग स्पर्शन क्षेत्र होना चाहिए था, तो ये कुछ कम क्यों कहा, ये उसका उत्तर पूरा दिया। अनुपूर्वी का विशिष्ट क्षेत्र में उसका उदय नहीं होगा, उसकी अपेक्षा से उन्होंने ये सब बता दिया। अब 13वें नंबर का सूत्र ऊपर पढ़ेंगे। शासन सम्मादिट्ठी ही केवड़ियम खेतम फोसिदम लोगस असंख्य यदि भागो। शासन सम्य दृष्टि नारकियों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यात्मा भाग स्पर्श किया है। इस सूत्र का अर्थ जो क्षेत्रानुयोग द्वार में कहा है वही यहाँ पर कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो क्षेत्र की बात करें, हर एक बारे में दो दो सूत्र बताए उन्होंने, एक क्षेत्र का और एक अतीत काल का स्पर्शन का, तो ये तो क्षेत्र संबंधी तो हम पहले विस्तार से जान चुके हैं। अब 14 नंबर का सूत्र, पंच चौदस भागावा देसुणा, अभी अतीत काल की अपेक्षा बताएंगे। उन्हीं सासाधन सम्य दृष्टि नारकियों ने अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 5/14 भाग स्पर्श किए हैं। क्यों? हाँ, सासाधन में मरण होके नरक में नहीं जाता, तो उसकी बात कहाँ आई? यहाँ तो नारकी सासाधनों की बात चल रही है, तो हाँ, छठे नरक तक के नारकी सासाधन के साथ ऊपर आएंगे उसी गुणस्थान में मरकर, सातवें नरक के नारकी सासाधन में नहीं मर सकते, ना ही सम्यक्त्व में मरते हैं, एकमात्र मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में मरकर ही वो ऊपर आएंगे, तिरियंचों में जन्म लेंगे, इसलिए यहाँ की बात चल रही। तो कितने क्षेत्र में स्पर्शन किया है, तो जो कुछ है वो मारणांतिक है, वो सब की अपेक्षा यहाँ ले लेंगे। इसलिए छठे से मरकर ऊपर आने वालों की बात है। देखो 19 आसाधन समय विषय नारकियों ने अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 5/14 भाग स्पर्श किए हैं। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैकृत समुद्घातगत सासादन सम्यक दृष्टि नारकियों ने सामान्य लोक आदि 4 लोकों का असंख्यातवा भाग और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। ये सभी नारकियों की बात है नहीं? वह इस प्रकार से नारकियों के बिल संख्यात योजन विस्तृत भी है और असंख्यात योजन विस्तृत भी है। कुछ बिल संख्यात योजन वाले हैं और कोई असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। उनमें नारकियों के 84 लाख आवास यदि असंख्यात योजन विस्तृत भी होते हैं तो भी उन समस्त नारकवासों के क्षेत्र का योग यानी टोटल तिर्यक लोक का असंख्यातवा भाग जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से कहते हैं। यानी सबकी टोटल हम क्षेत्र की निकालेंगे तो भी तिर्यक लोक का असंख्यातवा भाग ही होगा। उसकी बात अब करते हैं। 84 लाख आवास है उसके। हाँ हाँ, बिलों की बात है। नारकियों के आवास कितने ही तो गोल आकार वाले होते हैं, कितने ही त्रिकोण, कितने ही चतुष्कोण, कितने ही पंचकोण और कितने ही नारकावास षटकोण होते हैं। ये बिलों के आकार बता रहे हैं। इन सभी आकारों वाले नारकावासों के समीकरण करने पर वे चतुरस्र और असंख्यात योजन विस्तृत हो जाते हैं। एवरेज निकालेंगे सबकी तो चतुरस्र करेंगे उसको तो असंख्यात योजन वाले चतुरस्र आकार हम कह सकते उसका। उनमें से संपूर्ण नारक राशि से घनांगुल के संख्यातवे भाग को गुणित करने पर प्राप्त हुआ क्षेत्र वर्तमान काल में नारकियों से रुद्ध क्षेत्र होता है। क्या क्या है? नारक राशि यानी नारकियों की राशि। तो संपूर्ण नारक राशि के राशि से घनांगुल के संख्यातवे भाग को गुणित करने पर नारकियों की राशि गुणा उनके अवगहना जो उनका उच्छेद लिया प्राप्त हुआ क्षेत्र वर्तमान काल में नारकियों से रुद्ध क्षेत्र होता है। नारकियों ने क्षेत्र कितना एक्यूपाय किया है तो जितनी नारकियों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय उनकी अवगहना तथा वर्तमान काल में नारकों द्वारा रोके हुए नरकों के बिल भाग से अरुद्ध भाग संख्यात गुणा होता है। पूरे बिल में वो व्याप्त नहीं ना नारकी, उसके संख्यात वे भाग में रहते हैं। जैसे पूरा घर हमारी अवगाहना कितनी है और घर की जो अंदर की अवगाहना कितनी है उसके घनफल उसका जिसको रूम कहते हम वो कितना है हा? अरुद्ध भाग संख्यात गुणा है। इसलिए नारकियों द्वारा रुद्ध क्षेत्र को संख्यात रूपों से गुणा करने पर यानी संख्यात रूप यानी संख्यात से गुणा करने पर कोई संख्यात राशि से गुणा करने पर नारकों का अतीत काल संबंधी स्वस्थान क्षेत्र का प्रमाण हो जाता है। वर्तमान काल में तो जहां वहां अवस्थित है परंतु अभी अतीत काल संबंधी लेना है तो जितनी नारकियों की राशि है उसको उनकी अवगाहना से गुणा किया और फिर उसको संख्यात गुणा किया क्योंकि उसी बिलों पर अलग अलग जगह पर रहते आए ना पहले से अतीत काल की बात कर रहे तो उसको संख्यात गुणा करना तो उसका स्वस्थान का स्पर्शन वाला क्षेत्र मिल जाएगा। अतः तिर्यक लोक का असंख्यात भाग जो ऊपर स्पर्शन क्षेत्र बताया गया है वह विरोध को नहीं प्राप्त होता। यानी ये जो अगर हम इसकी संख्या निकालेंगे वो भी तिर्यक लोक का असंख्यात भाग ही आता है, तिर्यक लोक प्रमाण नहीं होता या उसके संख्यात भाग नहीं होता। इस प्रकार वा शब्द से सूचित अर्थ की प्ररूपणा की गई है जब तिर्यक लोग कहते हैं तो एक राजू गुणा सात राजू और गुणा एक लाख योजन, और यहाँ तो हाँ उसका संख्या तो भाग ले रहे। अब सासाधन सम्यदृष्टि जीव का नरक गति में उपपाद नहीं होता, क्योंकि उसका सूत्र में प्रतिषेध किया गया है। तो हमने बहुत बार जाना है सासाधन वाला मरकर नरक में नहीं जाता। मारणांतिक समुद्घातगत सासाधन सम्यक दृष्टियों ने कुछ कम 5/14 भाग स्पर्श किए हैं, क्योंकि सातवीं पृथ्वी के नारक सासाधन सम्यक दृष्टियों का मारणांतिक समुद्घात करना संभव नहीं है। वो उस गुणस्थान में मरते भी नहीं और ना ही मारणांतिक समुद्घात करते। सातवें नरक के नारकी मात्र एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में ही मरते हैं और मारणांतिक समुद्घात भी करते हैं। वो भले वो लंबे काल तक सम्यक दृष्टि भी क्यों न हुए, मरने के पहले वो मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाते। ये नियम है सातवें नरक के नारकियों के लिए। शंकाकार पूछते यह कैसे जाना जाता है। इसी सूत्र से जाना जाता है कि सातवीं पृथ्वी के सासाधन सम्यक दृष्टि नारकी मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। यदि करते होते, सूत्र से कैसे जाना, यदि करते होते तो सूत्र में 6/14 भाग के स्पर्श का उल्लेख होता। यहाँ 5/5 लिखा है तो 5 राजू कहाँ तक हो गए, छठे नरक तक। अगले प्रश्न 178। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घातगत सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि नारकी जीवों ने वर्तमान काल में सामान्य लोक आदि 4 लोकों का असंख्यात भाग और मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इसका कारण क्षेत्र प्ररूपणा से सिद्ध है, परूपणा हुआ है, प्ररूपणा करना उस दूसरा प्र हुआ है। पहले को प्र करो और दूसरे को प करो, परूपणा हुआ है, वो प्ररूपणा करना उस। अतीत काल में भी इन दोनों ही गुणस्थानवर्ती नारकी जीवों ने इन्हीं पदों की अपेक्षा सामान्य लोग आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग ही स्पर्श किया है, क्योंकि नारकियों के आवास असंख्यात योजन विस्तृत होते हैं। इस प्रकार मन से संकल्प करके एक नारकावास के क्षेत्रफल को 84,00,000 रूपों से गुणित करने पर तिर्यक लोक का असंख्यात्वा भाग मात्र क्षेत्रफल पाया जाता है। यानी 84,00,000 वो नरक बिल है, नरक के आवास है, और मान लेते सभी असंख्यात योजनों के हैं तो भी वो तिर्यक लोक का असंख्यात्वा भाग ही होता है, ये बात यहाँ बताना चाहते। सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकियों के मारणांतिक समुद्घात और उपपाद ये 2 पद नहीं होते। वो तो कहीं भी किसी भी गति में जाओ वो तो हो गए ही नहीं सम्यक मिथ्यात्व वाले को। मारणांतिक समुद्घात और उपपादगत असंयत सम्यक दृष्टि नारकों ने सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग और मनुष्य लोक से असंख्यात गुणा क्षेत्र वर्तमान काल में स्पर्श किया है। इसका कारण क्षेत्र प्ररूपणा से सिद्ध है। अब 15 नंबर का सूत्र, सम्मा मिच्छा दिट्ठि असंजत सम्मा दिट्ठि ही केवड़ियम खेतम फोसिदम लोगस्य असंख्ये यदि भागो। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि नारकी जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। पहले क्षेत्र की बात की, अभी अतीत काले ने स्पर्श की बात कर रहे हैं। अतीत काल में मारणांतिक समुद्घातगत असंयत सम्यक दृष्टियों ने सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग और मनुष्य लोक से असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पर्श किया है, क्योंकि सर्व जीवों के अपक्रम षटक का नियम देखा जाता है। यह अपक्रम षटक क्या है नहीं मालूम अरविंद भाई? जब मरता है जीव तो 6 ही दिशाओं में जाता है वो, या ऊर्ध्व या नीचे या पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, विदिशाओं में उसका गमन नहीं होता, इसको अपक्रमण शतक कहा। यानी भवांतर में संक्रमण करना यानी अन्य भव में जाना, तो उस समय क्या होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे, वो छह ही अपक्रमों से युक्त होता है, ऐसा कहा है, छह अपक्रमों से युक्त। ये बात उन्होंने लिखा नहीं, भाग एक पृष्ठ 101। हाँ, स्थानांग में लिखा, एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है, चार क्या है, पांच क्या है, छह क्या है, वो छह में ये बात बताई थी उन्होंने, छह अपक्रम से युक्त होता है। हाँ, उसमें बात बताइए। तो ये नियम है, तथा ऊपर जाने वाले जीवों के भी अपनी उत्पत्ति क्षेत्र को नहीं प्राप्त करके अंतराल काल में ही निश्चित दिशा को छोड़कर अन्य दिशा या विदिशा में गमन करने का अभाव है। अब जो नारकी मरकर ऊपर आएंगे बद्धलोक में, तो बीच में थोड़ा घूम घाम के आए ना, तो सीधा ही जाएंगे, जितने मोड़ आवश्यक है उतने भले लेंगे, परंतु बीच में और तिरछा कहीं नहीं जाएंगे। तो कहते हैं अंतराल काल में निश्चित दिशा को छोड़कर अन्य दिशा या विदिशा में गमन नहीं करते, और न उत्पत्ति क्षेत्र के समान अन्य क्षेत्र पर स्थित जीवों के भी अनियत गमन होता है, क्योंकि उनका गमन एक दिशा में ही अर्थात उत्पत्ति क्षेत्र की ओर ही नियत हो चुका है। भवांतर में जाते हैं तो उत्पत्ति का जो क्षेत्र है उसी दिशा में जाएंगे, ऐसे नहीं वो पूर्व में उत्पन्न होने वाले तो पहले थोड़ा दक्षिण में इधर उधर घूम के फिर जाएंगे, ट्रैफिक जाम होगा तो दूसरी तरफ से जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तिरछे गमन करने वाले भी जीवों के अपनी उत्पन्न होने वाली दिशा को छोड़कर अन्य दिशा को गमन नहीं होता है। उत्पन्न होने की दिशा को जाते हुए भी जीवों के अपने उत्पन्न होने के क्षेत्र के समान अन्य स्थान को नहीं प्राप्त करके अंतराल में सर्वत्र ऊपर की ओर वलन का अभाव है। यानी जहाँ उत्पन्न होना है वहीं पर जाते हैं और निश्चित दिशा वो नियत उनका सब है, ऐसे ही कहीं इधर उधर नहीं जाते, उनका गमन नहीं होता। इस उत्पत्ति और सर्वत्र ऊपर की ओर वलन का अभाव है, गमन का, टर्न करने का, इसलिए सभी नारकावासों से मनुष्य क्षेत्र को आने वाले और नारकावास में प्रतिष्ठित होते हुए नियत क्षेत्र की ओर प्रवर्तमान सम्यक दृष्टि जीवों का, ये सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि सभी नरकों से जहां से मरकर आने वाले हैं तो कहां जाएंगे, मनुष्य लोक में ही आएंगे, मनुष्य में आएंगे, क्योंकि तिरेंचो में भी नहीं जाएंगे, सम्यक दृष्टि की बात है। तो कहते सभी नारकावासों से मनुष्य क्षेत्र को आने वाले और नारकावास में प्रतिष्ठित होते हुए नियत क्षेत्र की ओर प्रवर्तमान सम्यक दृष्टि जीवों का स्पर्शन सामान्य लोक आदि चार लोकों का असंख्यात भाग ही है, उतने ही क्षेत्र में आएंगे वे सब। अथवा मनुष्यों में उत्पन्न होने के कारण नारकी सम्यक दृष्टियों का वहां के मिथ्या दृष्टियों के समान घनराजू चाहिए ना, घनराजू प्रतर के सर्व आकाश प्रदेशों से निर्गमन नहीं होता, क्योंकि नरक गति से प्रतिपद्ध मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी वाले जीवों के तिर्यक गति प्रायज्ञानुपूर्वी वाले जीवों के समान प्रतिबद्ध आकाश प्रदेशों का राजू प्रतर में सर्वत्र अभाव है। मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी है तो वो 45 लाख योजन है ना, वो बीच वाला प्रदेश वहाँ पर आएगी पहले और फिर ऊपर गमन होगा उनका, तो आजू बाजू में उसका अभाव है, इसे बात कहते हैं। शंका, इस सर्वत्र अभाव का लिंग क्या है, अर्थात यह किस आधार से जाना। समाधान, उक्त बात को बताने वाला यही स्पर्शन सूत्र है, इसी से जान सकते हैं। समीकरण करने पर यदि एक नारकावास का विष्कम्भ, विष्कम्भ ने इसकी चौड़ाई व्यास, एक जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल से खंडित करने पर एक खंड मात्र होता है, जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल से खंडित करने पर क्या होगा? प्रथम वर्गमूल होगा ना। जगत प्रतर को नहीं कहा, जगत श्रेणी को कहा। किसी भी संख्या को उसके द्वितीय वर्गमूल से भाग देंगे, 256 को 4 से भाग देंगे तो 256 का प्रथम वर्गमूल 16 आएगा, बराबर, एक खंड होता है। तो उसका क्षेत्रफल जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से जगत प्रतर को खंडित करने पर एक खंड मात्र होता है। पहले क्या कहा, विष्कम्भ, हम 256 का ही उदाहरण ले लेंगे। हम मान लेते हैं 256 जगत श्रेणी को मानेंगे हम, तो जगत प्रतर कितना होगा? जगत श्रेणी यदि 256 मानेंगे तो जगत प्रतर अपना पनट्टी प्रमाण हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ क्या लिखते हैं, ये जगत श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को भाग देंगे, 256 को 4 से भाग देंगे तो एक खंड मात्र होता है। ये एक विष्कम्भ ने एक साइड बताई, 16 बताई ना, एक साइड कितनी होती है, तो इसका जो उत्तर आता है 16। अभी हम मानते हैं 16, अभी उसका क्षेत्रफल कितना होगा, सॉरी 64। मेरा घोटाला हो गया, हाँ हाँ हाँ, प्रथम वर्गमूल संख्यात प्रथम वर्गमूल चाहिए, हमने वो पहले देखा था 16 गुणा संख्यात प्रथम वर्गमूल, बराबर है। तो ये 64 आ गई, यहाँ यानी 4 गुना प्रथम वर्गमूल आ गए, है ना। चार चौक सोलह। अभी आगे देखेंगे ना, अभी ये तो एक खंड हमारा 64 का आया, तो कहते हैं उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये बात निकालनी हमको। तो उसका क्षेत्रफल जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से, अभी जगत श्रेणी का प्रथम वर्गमूल यानी 16 से जगत प्रतर को खंडित करने पर एक खंड मात्र होता है। पनट्टी को खंडित करने पर कितना होगा, 16000 कितना है, 65 है ना, 65536 डिवाइडेड बाय, अभी 16 करना है, 4096। हाँ, तो हम छोटी फिगर करके फिर देखते हैं इसको, हम 16 की बात करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट इजीली। 16 को उसके द्वितीय वर्गमूल से भाग दिया, 8 आए, ये 8 हुए, ये क्या हुआ, विष्कम्भ, एक वृत्त। तो उसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 8×8=64, वो यहाँ उन्होंने करके बताया। 16 को उसके द्वितीय वर्गमूल से भाग देने पर जो एक खंड आता है वो उसका विष्कम्भ है, और उसी का क्षेत्रफल कितना है, तो 16 का वर्ग 256, उसको 16 का प्रथम वर्गमूल 4 से भाग दो, तो वही है ना विष्कम्भ गुना विष्कम्भ। वो बड़ी संख्या लेने से जरा घोटाला हो गया अपना, क्या कहना चाहते, देखो विष्कम्भ कितना है, पहले पेज से फिर यदि नारकावास का विषकंभ एक जगत श्रेणी को, अभी जगत श्रेणी के स्थान पर हम 16 मानेंगे फॉर एग्जाम्पल, हमने को अपने को खाली अंक संदृष्टि से समझना है, एक जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल से यानी 2 से खंडित करने पर एक खंड मात्र आता है विषकंभ, और हमने मान लिया है समचतुरस्र मान लिया ना उसको, जितना विषकंभ होगा उससे उतने कोई उसके गुणा करना है तो हमको क्षेत्रफल मिलेगा। तो क्षेत्रफल कितना होता है, जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से यानी अभी हमने मान लिए कितने 16 मान लिए थे, तो उसका प्रथम वर्गमूल हो जाएगा 4। जगत प्रतर को खंडित करने पर, 16 की भाषा में जगत प्रतर किसको कहते हैं, 256 को, तो 256 को खंडित करने पर एक खंड मात्र यानी अभी कितना होगा 64 होगा। पुनः अतीत काल में वहां रहकर ऊपर की ओर मारणांतिक समुद्घात करने वालों का यह क्षेत्रफल मुख रूप हो जाता है और संख्या त्राजू प्रमाण आयाम होता है। ये तो उनका क्षेत्रफल जो लिया, जिस क्षेत्र से निकलने हैं वो तो क्षेत्रफल हुआ ना, विषकंभ गुणा विषकंभ, ये तो हुआ उनका मुख। अब लंबाई कितनी हो गई, संख्या त्राजू, जहां से ऊपर की ओर गमन करेंगे वो संख्या त्राजू है, जिस नरक से जाएंगे उतने राजू उनका आयाम यानी लंबाई उतनी हो जाएगी। शंका, यहां पर अर्थात उस क्षेत्र में उच्छेद से क्षेत्रफल को गुणा करने पर तो तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा मारणांतिक क्षेत्र हो जाता है, तो उच्छेद से गुणा करेंगे तो ज्यादा होता है, ऐसी शंका है। उसका समाधान नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार के विषकंभ से सहित एक भी नारकावास नहीं है। उन्होंने क्या कहा, नारकावास का ही घनफल निकाल दो, ऐसा कहते हैं। तो शंकाकार पूछता है यह कैसे जाना जाता है। उसका समाधान, नारकी असंयत सम्यक दृष्टि सर्व पदों की अपेक्षा अतीत काल में तिर्यक लोक के असंख्यात वे भाग मात्र क्षेत्र को स्पर्श करते हैं, इस प्रकार के सूत्र वचन से उक्त बात जानी जाती है। सूत्रों के द्वारा उन्होंने ये सारा कहां से आते हैं, कितने क्षेत्र में रहते हैं, ये सिद्ध किया है। फिर शंका, नारकों के आवासों का विषकंभ कितना होता है। उसका समाधान, असंख्यात योजन प्रमाण होता है, वह इस प्रकार से है, अपना अपना स्वस्थान क्षेत्र स्थापित करके अपने अपने बिलों की संख्या उनसे अपवर्तन करने पर एक बिल से रुद्ध क्षेत्र असंख्यात योजन विषकंभ और आयाम वाला हो जाता है, लंबाई चौड़ाई उसकी असंख्यात योजनों की हो जाती है। उसे संख्यात राज्यों से गुणा करने पर एक बिल का आश्रय करके मारणांतिक समुद्घातगत क्षेत्र हो जाता है, एक बिल की अपेक्षा मारणांतिक क्षेत्र निकाला उन्होंने। इस प्रमाण को बिलों की संख्या से गुणा करने पर सकल मारणांतिक क्षेत्र हो जाता है, यह मारणांतिक क्षेत्र तिर्यक लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण होता है। उनको सिद्ध इतना ही करना है कि तिर्यक लोक का असंख्यात वा भाग है। सर्व नारकावासों का घनफल असंख्यात योजन प्रमाण होकर भी एक राजू प्रतर का असंख्यात वा भाग मात्र ही होता है। एक राजू गुना एक राजू के बिल तो थोड़े होंगे ना उसमें पूरी भूमि में, और वहाँ तिर्यक लोक तो एक राजू और 7 राजू, और फिर हमने उस 7 राजू गुना 7 राजू कर दिया था, उसको लाख का 7वां भाग करके, हाँ तो वो कितना बड़ा हो गया रहा है, जगत प्रतर हो गया ना 7 राजू गुना 7 राजू, तो ये तो उसका असंख्यात वा भाग होना ही है, क्योंकि असंयत सम्य दृष्टि नारकों का मारणांतिक स्पर्शन तिर्यक लोक के असंख्यात वे भाग होता है, ऐसा सूत्र वचन है। उस पर से उन्होंने बाकी सब घटित किया है, सूत्र को प्रमुख करके उसके द्वारा ये घटित किया उन्होंने। यदि कहीं भी एक बिल का क्षेत्रफल राजू प्रतर के संख्यात वे भाग प्रमाण होता तो असंयत सम्य दृष्टि नारकों का मारणांतिक स्पर्शन क्षेत्र तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा होता। कितना अगर राजू प्रतर का संख्यात्व भाग अगर एक एक बिल होता तो, परंतु राजू के संख्यात्व भाग प्रमाण नहीं, वो असंख्यात योजन है, वो भी बहुत असंख्यात्व भाग है। क्योंकि तिर्यक प्रतर के बाहल्य से मानांतिक क्षेत्र का बाहल्य असंख्यात गुणा है। क्योंकि मानांतिक क्षेत्र ऐसे राजू में है ना, कितने ही राजुओं का है, वो असंख्यात गुणा है। प्रथम पृथ्वी के स्वस्थान क्षेत्र में जगत श्रेणी के संख्यात्व भाग से गुणा करने पर असंयत समय दृष्टि नारकों का मानांतिक स्पर्शन क्षेत्र तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा होता है, ऐसा कितने ही आचार्य समाधान करते हैं, किंतु वह घटित नहीं होता। क्योंकि स्वस्थान क्षेत्र को बिल शलाकाओं से अपवर्तित कर लब्ध राशि के वर्गमूल प्रमाण विष्कम्भ से अर्धराजु आयाम प्रमाण स्पर्शन क्षेत्र पाया जाता है, तथा ऊपर जाकर तिरछे गमन करने वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र बहुत नहीं है, जैसा कि तिरछे जाकर ऊपर जाने वालों का स्पर्शन क्षेत्र बहुत नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त ही विष्कम्भ द्वारा गमन पाया जाता है। यानी ऊपर जितना ऊपर जाना है वो तो क्षेत्र उतना ही लिमिटेड है, भले पहले आड़ा जाओ फिर ऊपर चढ़ो, या फिर पहले ऊपर जाके फिर आड़ा जाओ, एक ही बात है। इसी प्रकार ये सम्यक मिथ्या दृष्टि और ये दो शब्द वहां से निकाल देना। इसी प्रकार असंयत सम्य दृष्टि नारकों के उपपाद क्षेत्र का भी कथन करना चाहिए, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि में उपपाद होता ही नहीं है ना। तीसरे गुणस्थान में उपपाद क्षेत्र होता ही नहीं है। ऊपर इतना ही लिखा था उन्होंने, एवं उपवादस्य विवत्तव्यम्। तो अपनी ओर से इन्होंने समय मिथ्या दृष्टि को भी जोड़ दिया, मगर वो ठीक नहीं है। अब अगला सूत्र, पढ़माय पुढ़विये नेरयेसु मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव असंजत सम्मादिट्ठी ही केवड़ियम खेतम फोसिदम लोगस्य असंख्य जदि भागो। कि प्रथम पृथ्वी में नारकियों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर असंयत सम्य दृष्टि नारकी जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। ये तो क्षेत्रानुगम में हमने बहुत विस्तार से इस सबको देखा था। स्वस्थान स्वस्थान, विहार व स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रिक और मारणांतिक समुद्घात तथा उपपादगत मिथ्या दृष्टि नारकों की वर्तमानकालीन स्पर्शन प्ररूपणा क्षेत्र प्ररूपणा के समान है, क्योंकि ये तो हमने देखा ही है पहले। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना के बाद कॉमा चाहिए। वेदना कषाय और वैकिरिक ससुद्घात हुआ, वैकिरिक समुद्घात गत मिथ्यादृष्टि नारकों ने अतीत काल में सामान्य लोक आदि चार लोगों का असंख्यातवा भाग और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इसका कारण यह है कि असंख्यात योजन विष्कम्भ वाले नारकावासों के घनफल को स्थापित करके तत्प्रायोग्य, तत्प्रायोग्य ने उसके योग्य यथा योग्य संख्यात बिल शलाकाओं से गुणा करने पर, यानी एक एक नरकावास कितना असंख्यात योजन वाला और मल्टीप्लाइड बाय बिलों की संख्या, तिर्यक लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र उपलब्ध होता है। मानांतिक समुद्घात और उपपादगत मिथ्यादृष्टि नारकों ने अतीत काल में सामान्य लोक आदि तीन लोकों का असंख्यातवा भाग, तिर्यक लोक का संख्यातवा भाग, यह असंख्यातवा भाग के बाद कॉमा देना, और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहाँ पर तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग कैसे कहा? पहले हमेशा वो तिर्यक लोक का असंख्यात्वा भाग कहते आए, तो ये संख्यात्वा भाग क्यों कह रहे हैं? उसका समाधान, 180,000 योजन प्रथम पृथ्वी के बाहल्य में से, नीचे का 1,000 योजन प्रमाण, वो हजार शब्द डालना बीच में, नीचे का 1,000 योजन प्रमाण क्षेत्र प्रथम पृथ्वी के नारकियों ने किसी भी समय नहीं छुआ है। क्या कहते हैं? पहली पृथ्वी कितनी मोटी है? 180,000। उसमें नारकी कहाँ रहते हैं? बिलो में, तीसरे भाग में। हाँ, फिर भी यहाँ कहते हैं नीचे का 1,000 योजन ही नहीं छुआ है, तो ऊपर छुआ है क्या नहीं छुआ? नीचे तो बिल ही नहीं है, ऊपर, ऊपर कैसे छुआ? मारणांतिक समुद्धात करेंगे तो छुएंगे कि नहीं, और उपपाद में भी छुएंगे, परंतु वो नीचे नहीं जा सकते, उसके जहाँ बिल है उसके नीचे तो नहीं जाएंगे। मारणांतिक या ऊपर से मरकर आते समय तो बीच को छुआ है उन्होंने, अब बहुल भाग और वो जो ऊपर का जो है ना खर भाग पंग भाग, कब छुआ है? मारणांतिक और उपपाद के समय, परंतु ये जो उनकी बिल की लिमिट है उसके नीचे तो नहीं जा सकते वे, इसलिए उसको कभी छुआ ही तक नहीं है सका उन्होंने, किसी भी समय नहीं छुआ है। ऐसा करके उक्त प्रमाण में से 1,000 योजन निकालकर शेष 179,000 बाहल्य वाले राजू प्रतर को स्थापित करके, राजू प्रतर यानी एक राजू गुणा एक राजू, त्रस नाली वाली, और अभी मल्टीप्लाइड बाय हाइट उसकी कितनी रहनी, वो 1,000 छोड़कर, हाँ 179,000 स्थापित करके उच्छेद की अपेक्षा 49 खंड करके प्रतराकार से स्थापित करने पर तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग हो जाता है। 49 से क्यों भाग देना? प्रतर करने ना उसके राजू प्रतर, वो भी वहां 7 राजू गुणा 7 राजू और गुणा 100,000 का सातवां भाग किया था वहां। तो इसमें और उसमें संख्यात का डिफरेंस होगा, क्योंकि 1 राजू रुंद वाला, 7 राजू लंबा और 100,000 योजन बाहल्य वाला तिर्यक लोक है, ऐसा उपदेश है। ये तो पहले हमने बहुत विस्तार से देखा था इसको। देखो क्या कहना चाहते हैं, तिर्यक लोक कितना हमने देखा, 1 राजू गुणा 7 राजू गुणा 100,000, बरोबर। अभी उसका हम सातवां भाग नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। और अभी हमने कितना निकाला है, पहले ने रखा 1 राजू गुणा 1 राजू गुणा 100,000, हाँ 79। तो यहाँ 7 राजू है और यहाँ 1 राजू है, संख्यात्वा भाग हुआ ना इसका, इसका ये संख्यात्वा भाग हुआ, क्योंकि यहाँ भी अगर हम 49 करते हैं तो ये जगत प्रतर की भाषा में आया था, और यहाँ भी 49 करेंगे, नहीं भी करेंगे तो संख्यात्वा भाग ही अपने ख्याल में आ सकता है। किंतु जो आचार्य 100,000 योजन बाहल्य वाला और 1 राजू गोलाई वाला तिर्यक लोक प्रमाण कहते हैं, तिर्यक लोक का प्रमाण कहते हैं, उनके उपदेशानुसार प्रथम पृथ्वी के नारकियों का मारणांतिक और उपपाद क्षेत्र तिर्यक लोक से साधिक होता है। वो संख्यात्वा भाग नहीं होता है, साधिक उससे भी बड़ा हो जाएगा, उससे भी सिद्ध करते कि उनका वो कहना बराबर नहीं है, ख्याल है ना? यानी क्षेत्र की अपेक्षा से कथन, वो सारे जो कुछ मिथ्या मान्यता है या कुछ उल्टी पुल्टी गड़बड़ है वो सब रूल आउट करते हैं। विशेषार्थ यहाँ प्रथम, यहाँ पर प्रथम नरक के मिथ्यादृष्टि जीवों का मारणांतिक और उपपाद क्षेत्र तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग इस प्रकार सिद्ध किया गया है। यदि हम तिर्यक लोक के 1 राजू लंबे चौड़े व 100,000 योजन मोटाई के सप्तमांश प्रमाण मोटे खंड करें तो 14,285.5 सप्तमांश योजन मोटाई वाले 49 खंड होते हैं। अब यदि 180,000 योजन मोटी और 1 राजू लंबी चौड़ी प्रथम पृथ्वी के प्रमाण में से नारकियों से सदैव अस्पृष्ट, अस्पृष्ट यानी जो स्पर्शा नहीं वो अस्पृष्ट, 1,000 योजन मोटा अधस्तन भाग पृथक करके शेष 179,000 योजन के 1 राजु लंबे चौड़े 49 खंड करे तो प्रत्येक खंड की मोटाई 3653/49 योजन प्रमाण होगी, जो पूर्वोक्त तिर्यक लोक के खंडों की मोटाई से लगभग चतुर्थांश पड़ती है। संख्या तो अभाका ना, इस प्रकार यह समस्त क्षेत्र तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग सिद्ध हो जाता है, किंतु लोक की मृदंगाकार मान्यता के अनुसार उक्त क्षेत्र तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग नहीं किंतु तिर्यक लोक से भी अधिक पड़ जाता है, क्योंकि यदि 1 राजु व्यास वाले गोल तथा 1 लाख मोटाई वाले तिर्यक लोक के पूर्व प्रकार 49 खंड करे तो प्रत्येक खंड 1 राजु व्यास वाला गोल तथा 240/40/49 योजन मोटा होगा। इसी प्रकार वर्तुलाकार लोक की मान्यता से उक्त मारणांतिक क्षेत्र के खंड भी 1 राजु व्यास वाले गोल तथा 3653/49 योजन मोटे होंगे और उनका समस्त घनफल वर्तुलाकार तिर्यलोक के घनफल से हीन रहकर अधिक हो जाएगा। ये मृदंगाकार या गोलाकार जो पहले मान्यता है उसको रूल आउट कर रहे हैं। उदाहरण देखो, यहाँ लिखा है आयत चतुरस्र तिर्यक लोक, 1 के ऊपर राय ने राजू गुना 7 राजू, नहीं तो रा राय ने पहले मराठी में राज मान्य राजश्री वो किताब मिलता था पहले खतों में भी लिखता है रा रा तो 1 राजु गुना 7 राजु गुना 1 लाख योजन यानी 1 का स्क्वायर हुआ ना, राजू स्क्वायर हुआ प्रतर राजू। देखो 7 राजू का 1 बना दिया उन्होंने, तो ये 7 वहां नीचे भाग देंगे तो उसका 1 बराबर हो जाएगा, तो 7 वो लाख के नीचे चला गया और उसको 49 से गुणा कर दिया और फिर उक्त मारणांतिक क्षेत्र वो तो 1 राजु गुना 1 राजु गुना 1,79,000 और फिर उसको 49 से भाग दिया और 49 से गुणा कर दिया, तो वर्तुलाकार तिर्यक लोक का अगर निकालो तो अगर हम 1 लाख उसका विष्कम्भ मानते हैं 1 राजु तो परिधि 3 राजु हो जाएगी और फिर 1 राजु का चौथा भाग से उसको गुणा करना पड़ेगा, व्यास का चौथा भाग से गुणा करते हैं ना परिधि को और लाख योजन से गुणा करेंगे तो 3/4 × 1,00,000/49 × 49। तो वर्तुलाकार लोक की मान्यता से उक्त मारणांतिक क्षेत्र कितना निकलेगा, तो ये मारणांतिक क्षेत्र भी निकाल के उन्होंने बता दिया, 3/4 जो अभी वर्तुलाकार निकाला था उसी को वो हाइट से गुणा करेंगे मारणांतिक क्षेत्र उतना आ जाएगा उसका, 3/4 × 1,79,000 = 3/4 × 1,79,000/49 × 49। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, हाँ वहाँ 1 लाख था और 1,79,000 लिया, वर्तुलाकार तिर्यक लोक में 1 लाख से गुणा किया था और ये 1,79,000 से गुणा किया, यानी वो सादिक हो जाता है, संख्यात्वा भाग नहीं रहता। समझ में ऊपर जो समझाया था वही उन्होंने अंकों में बताया। इस प्रकार के उक्त क्षेत्रों में प्रथम दूसरे से 700 उसको भाग देना 179 से और वो आती है संख्या 3/163/179 यानी कुछ कम चौगुना, अर्थात संख्यात गुणा सिद्ध होता है। प्रथम दूसरे से यानी जो हम आयत चतुरस्र तिर्यक लोक जैसा है वैसा मानेंगे तो वो तिर्यक लोक संख्यात गुणा और मारणांतिक क्षेत्र उसका संख्यात्व भाग सिद्ध होता है। तथा चौथा तीसरे से कुछ कम दुगुना, अर्थात सातिरेक सिद्ध होता है। चौथा ने अभी जो नंबर दिए ना, वर्तुलाकार लोक की मान्यता के अनुसार मानांतिक क्षेत्र है वो तिर्यक लोक से थोड़ा अधिक हो जाता है, किंतु यह घटित नहीं होता, क्योंकि इस उपदेश के स्वीकार करने पर लोकाकाश में 343 घन राज्यों की उत्पत्ति नहीं होती। वर्तुलाकार अगर मानेंगे तो लोकाकाश 343 नहीं होता। दूसरे, राजों को 7 से गुणा करने पर जगत श्रेणी होती है, जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणा करने पर जगत प्रतर होता है, और जगत प्रतर को जगत श्रेणी से गुणा करने पर घनलोक होता है। इस सर्व आचार्यों से सम्मत परिक्रम सूत्र से विरोध भी प्राप्त होता है। यदि ये वर्तुलाकाल मानेंगे तो की बात है। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि नहीं करना, योनिमति को योनि नहीं करना। ऊपर लिखा ना पंचेंद्रिय तिर्यक पज्जत योनि नहीं, ज्योतिष्क और व्यंतर देवों के प्रमाण लाने के लिए कहे गए खुद्दाबंध सूत्र सिद्ध, कृतयुग्म राशि वाले, ये फिर शब्द आला कृतयुग्म, हाँ 1 2 3 4 वाला कृतयुग्म है ना, जिसका निशेष भाग जाता है वो कृतयुग्म, 4 का भाग देंगे हम निशेष जाता है उसको कृतयुग्म राशि कही थी। कृतयुग्म राशि वाले अवहार कालों से अकृतयुग्म जगत प्रतर में भाग देने पर ये उक्त राशियां सच्छेद हो जाएंगी, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उन जीवों के छेद का अभाव है, यानी 4 से पूर्णता भाग देने वाली वो जो राशि है उसको कृतयुग्म राशि कहते हैं। ये कृतयुग्म आदि राशियों की हमने तीसरे भाग में देखी थी बात, देखी थी दूसरी बात। हाँ आगे यहाँ इन्होंने लिखा ही है, तीसरा भाग देखो पृष्ठ 249, यहाँ भी अगले पृष्ठ पर आएगी 3 नंबर में तीसरी लाइन, 4 से पूर्णता भाजित होने वाला कृतयुग्म राशि ने 4 से पूर्णता भाजित होने वाला। यानी निरवशेष भाग जाएगा तो कुछ रहेगा नहीं, परंतु अगर उनकी मान्यता से इसको हम भाग देंगे तो कुछ बाकी रह जाएगा। दूसरी बात यह है कि उक्त कथन के मानने पर द्रव्यान योग द्वार के व्याख्यान में कहे गए अधस्तन और उपरिम विकल्प अभाव को प्राप्त होते, यानी उनकी बात अगर सत्य मानेंगे तो द्रव्यान योग में जो हमने पहले देखा था द्रव्य प्रमाणानुगम में अधस्तन विकल्प और उपरिम विकल्प, वो याद है ना, हम पहले भागहार निकालते थे फिर उसके ऊपरी विकल्प बताते थे, नीचे की भी विकल्प बताते हैं, क्योंकि उक्त प्रकार से लोक वर्गहीन राशि से समुत्पन्न होता है। हमने देखा था लोक जो है वो वर्ग राशि है कि नहीं है, घन भले हो परंतु वर्ग है कि नहीं है, नहीं है, वर्ग है, क्योंकि घनाघन राशि में स्टार्टिंग पॉइंट है 2 के घन का घन 512, और आगे की समस्त संख्या है 512 का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, यानी लोक जो राशि है घनाघन धारा में आती है ना, जगत श्रेणी है वो घन धारा में आती है ना, सुचंगुल वगैरह वो तो वर्ग धारा में आते हैं, तो लोक भी वर्गों से समुत्पन्न है, वर्गों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वर्गों का वर्ग, अगर उनकी बात मानेंगे। दूसरी बात है ना कि क्या लिखा है, उक्त प्रकार से लोक वर्गहीन राशि से वर्ग विहीन राशि से समुत्पन्न होता है, अगर उनकी बात मानेंगे तो। शंका, 343 घनराजो प्रमाण लोक का नाम उपमा लोक है। इससे अन्य पांच द्रव्यों का आधारभूत लोक भिन्न है। ये उपमा लोक यानी क्या, आपने सुना है ना? उपमा मान सुना है? हाँ, उपमा मान कौन कौन से मालूम है आपको? हाँ, पल्य, सागर, सुचंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, हाँ? और फिर जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक, ये जो आठ बातें हैं इसको हमने उपमा मान समझा था। एक तो द्रव्यमान यानी संख्या है और उपमा मान यानी संख्या ही बताना है, परंतु उपमा देकर उसका माप बताया है, उसको उपमा मान कहते हैं। तो शंकाकार अभी कहेगा ये उपमा देने वाले लोक वो अलग है और जहाँ छह द्रव्य पाए जाते वो लोक अलग है, क्योंकि वो पहली मान्यता पुष्ट करनी है उसको वर्तुलाकार लोक के। तो कहता है ये तो उपमा लोक है, इससे अन्य पांच द्रव्यों का आधारभूत लोक भिन्न है। यदि ऐसा माना जाए तो यह सब पूर्वोक्त कथन घटित हो सकता है, यानी वो अपने मान्यता पर अभी भी चिपका हुआ है और उसको वो वर्तुलाकाल ही सिद्ध करना है। तो कहेंगे वो लोक अलग होगा, ये 343 वाला माप के लिए तो लोक अलग होगा, वो कहने के लिए वो लोक अलग होगा। समाधान, नहीं। क्यों? हाँ, देखो पांच द्रव्यों का आधारभूत है ना क्या, हम लोक किसको कहते हैं? हाँ, छह द्रव्यों के, यानी लोक के सिवाय अन्य कितने द्रव्य वहाँ? आकाश को छोड़कर और कितने द्रव्य हैं? पांच है ना। लोकाकाश में लोकाकाश के अलावा कितने द्रव्य हैं? पांच द्रव्य हैं। तो ये पांच द्रव्यों का आधारभूत लोक कहा उसको, ख्याल है? जीव, पुद्गल, धर्म, धर्मा, आकाश तो वो स्वयं है, और काल, इनको आधार देने वाला ऐसा लोक वो कोई अलग है, और वो 343 वो माप के लिए जो लोक का वो अलग है। हम भोजन करते हैं तो खाने की कटोरी अलग है और माप लेने की अलग है, ऐसा कहते हैं। ऐसा यहाँ भी कोई लोक होता होगा। तो समाधान कहते हैं नहीं, क्योंकि उपमेय के अभाव में उपमा की अन्यत्र उपलब्धि नहीं होती है। उपमेय यानी जिसका जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय है, और उपमा तो उपमेय ही नहीं होगा, एक्चुअल लोक ही नहीं होगा, तो उपमा किसकी देंगे, किसको देंगे? अर्थात यदि उपमा के योग्य किसी पदार्थ का अस्तित्व न माना जाएगा तो फिर उपमा की सार्थकता कहाँ पर होगी? इसलिए उच्छेदांगुल और प्रमाणांगुल सौनिक, सौनिक यानी नाम वाले क्षेत्र रूप उपमेयों के तथा पल्योपम और सागरोपम सौनिक काल रूप उपमेयों के विद्यमान होने पर, क्या कहते हैं उपमेय कौन कौन अभी, कि जिसका नाम उच्छेदांगुल और प्रमाणांगुल है वो क्षेत्र रूप उपमेय हुए, और पल्ल्य और सागर काल रूप उपमेय हुए। उनके विद्यमान होने पर उपमा रूप उच्छेदांगुल, प्रमाणांगुल और सागर का अस्तित्व पाया जाता है, यानी एक्चुअल वहाँ सागर है, पल्ल्य है, और वो उतना क्षेत्र या उतना काल है, तो वो है इसलिए हम उसको समझा रहे कि ये पल्ल्य है, ये सागर है। विशिष्ट जो समयों का समूह है उसको हमने पल्ल्य सागर कहा, पर एक्चुअली जहाँ पल्ल्य करके उसमें वो रोमखंडों से भरो, उसका एक एक बाल निकालो, वो एक्चुअल इतना हम नापेंगे तो है, इसलिए उसका उत्तर बताए ना। वैसे सागर नाम का नाप है, सागर में वो जल बिंदु वगैरह उसकी राशि हमने निकाली थी, वो तो समय ज्ञान चंद्र का विस्तार में देखा था, इसलिए उसका नाम सागर है। तो एक सागर में कितने पल्ले होते हैं? तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं, तो एक्चुअल है इसीलिए उसकी उपमा देकर समझाएं, ये बात बताते। अतएव यहाँ पर भी उपमेय रूप लोक के साथ प्रमाण की अपेक्षा उपमा लोक का अनुसरण करने वाला पांच द्रव्यों का आधारभूत लोक होना चाहिए। जिसको हमने संख्या में जिसको हमने लोक कहा है वो एक्चुअल में भी कोई लोक है, तो ही तो हम कहते हैं एक लोक में जितने प्रदेश है, 343 घनराजु प्रमाण जो आकाश का क्षेत्र है, उसमें जितने प्रदेश है उसको यहाँ हम उपमा में लोक कहते हैं, हमको संख्या बतानी होती है ना तब, अन्यथा इसका नाम उपमा लोक हो नहीं सकता। विशेषार्थ, यहाँ धवलाकार ने लोक की वर्तुलाकार मान्यता के विरुद्ध 5 हेतु दिए हैं जो इस प्रकार है। प्रथम, पृथ्वी के मिथ्यादृष्टि जीवों का मानांतिक क्षेत्र तिर्यक लोक का संख्यात भाग कहा गया है, किंतु यदि लोक को आयत चतुरस्र न मानकर वर्तुलाकार माना जावे तो वह क्षेत्र तिर्यक लोक से हीन नहीं किंतु साधिक हो जाता है, जो अभी अभी हमने देखा। दूसरी बात, परिक्रम में यानी परिक्रम नाम का जो शास्त्र है उसमें राजू जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक का संबंध बतलाकर घनलोक को 343 राजू प्रमाण सिद्ध किया है। यह प्रमाण व व्यवस्था वर्तुलाकार लोक में नहीं पाई जाती। वर्तुलाकार का हम घनफल निकालेंगे तो वो ठीक नहीं बैठता, कम आता है। तीसरी बात, खुद्दाबंध में पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, जो अभी हमने करेक्शन किया था ना वहाँ पहले लाइन पर, वही बात यहाँ बता रहे। ज्योतिष और व्यंतर देवों के प्रमाण को लाने के लिए अवहार कालों को कृतयुग्म राशि अर्थात 4 से पूर्णतः भाजित होने वाला कहा है, और इससे जगत प्रतर निरवशेष भाजित हो जाता है, जिससे जगत प्रतर भी कृतयुग्म राशि सिद्ध हुआ, बराबर। किंतु वर्तुलाकार लोक की मान्यता में जगत प्रतर अकृतयुग्म रूप पड़ेगा, उसकी अपेक्षा अगर हम डिराइव करेंगे तो, जिससे उक्त अवार कालों द्वारा वह पूर्णता भाजित नहीं होने से वे पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त योनिनी आदि राशियां सच्छेद हो जाती है, अपूर्णांकों में आती है, छेद कुछ बाकी रह जाएगा वहाँ, ख्याल है ना, पूर्ण उसका भाग नहीं जाएगा, क्योंकि जगत प्रतर का उनकी अपेक्षा से जगत प्रतर का प्रमाण ही कुछ अलग हो जाएगा। द्रव्यानुयोग द्वार के व्याख्यान में चौथी बात, गुणस्थानों व मार्गणास्थानों के भीतर जीवों का प्रमाण उपरिम विकल्प और अधस्तन विकल्पों द्वारा भी समझाया गया है। हमने देखा ना जो मूल उसके अवहार काल बताएंगे, फिर उसके उपरिम विकल्प या संख्या बताएंगे, कोई भी जो संख्या है उसके उपरिम विकल्प और नीचे के विकल्प बतलाए थे। किंतु यदि लोक को उक्त प्रकार वर्तुलाकार माना लिया जाए तो उसमें वर्ग व वर्गमूल की व्यवस्था नहीं बनने से उपरिम विकल्प और नीचे के विकल्पों में हमने अगले अगले वर्ग या नीचे नीचे के वर्गों को गुणा करो या भाग दो जो कुछ है वो कहा था, तो इनमें लोक तो वर्ग रूप संख्या ही नहीं आती है, तो उसके ऊपर के वर्ग और नीचे के वर्ग ये भी बन नहीं सकता। तो वर्तुलाकार मान लिया जाए तो उसमें वर्ग व वर्गमूल की व्यवस्था नहीं बनने से वे विकल्प बन ही नहीं सकेंगे। ये तो ऊपरी विकल्प और नीचे अधस्तन विकल्प हमने बहुत बार देखा था पहले। पांचवी बात, यदि यह कहा जाए कि 343 राजू प्रमाण वाले लोक को द्रव्याधार लोक न मानकर, यानी द्रव्य के आधार वाला लोक न मानकर केवल कल्पित उपमा लोक ही माना जाए तो यह भी ठीक नहीं है। केवल 343 का माप वाला लोक है यदि ऐसा मानेंगे, और वो द्रव्य को आधार देने वाला लोक वर्तुलाकार ही ऐसा मानेंगे तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उपमेय के अभाव में उपमा का अस्तित्व ही नहीं रहता, तथा अंगुल, पल्यपम, सागरोपम आदि जो अन्य उपमा प्रमाण माने गए हैं उन सबके आधार रूप उपमेय प्राप्त है, यानी वैसे वैसे वहाँ उपमेय है और उसी की उपमा दी है, तो यहाँ भी उपमेय भी है और उपमा भी है, अतः प्रमाण लोक को भी काल्पनिक न मानकर, प्रमाण लोक यानी वो मापने वाला लोक, प्रमाण मान वाला उपमा मान जिसको कहते हैं, काल्पनिक न मानकर सोपमेय यानी उपमेय वाला ही स्वीकार करना आवश्यक है, यानी एक्चुअल लोक और ये प्रमाण वाला लोक एक ही बात है, ये बात यहाँ सिद्ध कर दी उन्होंने। सेम है परंतु वो मानता नहीं था ना, उसको वर्तुलाकार मानने से वो सिद्ध नहीं होता, वही तो ये सब सिद्ध किया अभी तक।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो